शाहबेरी में पुराने फर्नीचर की धूल भरी दुकानें थीं, जिन्हें शोरूम कहना गलत होता। हर दुकानदार का एक ही जवाब होता, साहब सोफे साज का क्या काम, नया सोफा ले जाइए, एकदम वाजिब दाम लगा देंगे। आखिरकार एक कुल्फी बेचने वाले ने हमें पता दिया, मॉडर्न स्कूल के पीछे गली नंबर 3 में कुर्बान अली को आवाज लगाइए, घर पर होंगे तो जरूरी निकल कर आएंगे। कीचड़ और कचरे के बीच गुजरकर हम गली नंबर 3 पहुंचे। एक घर के बाहर टूटा हुआ झूला और खस्ता हाल मेज देखकर मैंने वहीं बाइक रोकी। कुर्बान अली जी, हमारा अंदाजा सही था, कुर्बान अली बाहर आए। बुजुर्ग थे, सफेद बाल और खिचड़ी दाढ़ी में उनका गोरा रंग उम्र के गर्दो गुबार में थोड़ा धूमिल हो चला था। फरमाइए, रजत ने उतावली से कहा, हमें अपने सोफे की मरम्मत करवानी है, कल मेहमान आने वाले हैं, आप आज ही कर दें तो बेहतर होगा। कुर्बान अली ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, सोमवार को आइए, आज के काम से हम फारिग हो गए हैं। देखिए प्लीज प्लीज देखिए, हमारा काम अर्जेंट है, अभी चलकर देख लीजिए, मैंने जोर दिया। कुर्बान अली घर में वापस मुड़ने को हुए, कह दिया ना, शाम के बाद हम काम नहीं करते। रजत को चैन नहीं था, उसने कहा, बड़े मियां, हम सोफा यहां उठाकर ले आए तो आप देख लेंगे। कुर्बान अली ठिठके, उन्होंने ध्यान से रजत को और मुझे देखा, फिर बोले, आवाज तो नहीं, कल सुबह देख सकता हूं। हमारी जान में जान आई। मैंने रजत से कहा, अब तुम घर जाकर चैन की नींद सो, कल किसी वक्त आ जाना। रजत ने जवाब नहीं दिया, चुपचाप बाइक के पीछे बैठ गया। घर पहुंचकर वो उसी लंबे सोफे पर बैठ गया। उसने मेरी बात का जवाब यहां आकर दिया, मैं आज रात को यहीं सोऊंगा, इतनी दूर बार बार आना मुनासिब नहीं। उसकी आंखों में तैरता भाव मैंने और निशा ने पढ़ लिया। निशा ने अंदर से एक चादर और तकिया लाकर सोफे पर रख दिया और खाना बनाने रसोई में चली गई। मैं अपने को बड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहा था। रजत ने अपनी पत्नी को फोन मिलाया, प्रियंका सुनो, यहां दफ्तर का कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं चावला के साथ मिलकर निपटा रहा हूं, तुम पड़ोस की आंटी जी को कहना तुम्हारे पास आकर सो जाएंगे, दरवाजे खिड़की ठीक से बंद कर लेना। मेरी हालत ये सोचकर खराब हो रही थी कि सोफा खुलवाने और वापस सिलवाने का खर्च और झंझट दोनों फिजूल मेरे सर पड़ेंगे, ऊपर से इस भीम का इस सोफे को शाहबेरी तक ले जाने की परेशानी। खाना खाने के बाद रजत गुप्ता आराम से सोफे पर चादर बिछाकर तकिया लगाकर पसर गया। जल्द ही उसकी नाक बजने लगी। मैंने दरवाजा और बिजली बंद की और अंदर कमरे में लैपटॉप पर एक अधूरी बैलेंस शीट पर काम करने लगा, लेकिन दिमाग में पिछले 2-3 घंटे के अनुभव चक्कर लगा रहे थे। तंग आकर मैंने लैपटॉप बंद किया और बिना कपड़े बदले बिस्तर पर लमलेट हो गया। सुबह 7:30 बजे जब हमारी आंख खुली, हमने पाया रजत गुप्ता तरोताजा नहाकर सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा है। मुझे देखते ही उसने कहा, बड़ी देर में उठते हैं आप लोग, मैं तो रोज 5 बजे उठता हूं, चाहे आधी रात के बाद नींद आए, मैंने तो उठकर स्नान भी कर लिया। निशा जल्दी से चाय बनाने लगी। मैं धीमे चाय सिप कर रहा था कि रजत ने प्लेट में डाल अपनी चाय ताबड़तोड़ पीकर खत्म की और खड़ा हो गया। यार चावला, सोफा उतारने वाला मजदूर कहां मिलेगा, अंदर या बाहर? मैं समझ गया, मेरी छुट्टी का आज कबाड़ा हो गया। आज जाकर मैंने कहा, सुनो तुम ये सोफा ही अपने घर ले जाओ, जब मर्जी खुलवा लेना। निशा रसोई से बाहर आई, और हम लोग कहां बैठेंगे, सारा दिन उठना बैठना टीवी देखना खाना पीना सब इसी सोफे पर होता है। रजत ने कहा, निशा जी मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि आपका सोफा ले जाऊं, बात अंगूठी की ना होती तो मैं इतनी देर तक रुकता भी नहीं, शादी की अंगूठी से मेरा भावनात्मक रिश्ता है। मैंने निशा को अंदर जाने का इशारा किया और अपनी हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर को फोन मिलाया। रविवार होने की वजह से वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था, फोन चौकीदार ने उठाया, मैंने उसी से अपनी समस्या बताई। तब अभी 13वीं मंजिल पर सामान चढ़ रहा है। हाँ, किसी का, वहां बात कर लीजिए। मैं भागा 13वीं मंजिल पर कि मजदूर हाथ से निकल न जाए। मजदूर मिल गए। जब कमरे से सोफा उठा, दीवार का वो हिस्सा इतना खाली और मनहूस लगने लगा कि मैंने निशा से कहा, यहाँ जल्दी से कुर्सियां रख दो। सोफे के अलावा हमारे पास 2 सोफे वाली कुर्सियां और 4 प्लास्टिक की कुर्सियां थी। ट्रॉली पर लद कर सोफा कुर्बान अली की गली नंबर 3 में पहुंचा। कुर्बान अली निकल कर आए। उन्होंने एक नजर सोफे पर डाली। ये तो बड़ा कीमती सोफा लग रहा है। जा, बड़ा कदीमी सोफा है ये तो, इसे क्यों खुलवा रहे हैं? रजत ने कहा, बड़े मियाँ, इसमें हमारा एक कागज दब गया है, बाएं हाथ की तरफ जरा खोलकर देखें। ऐसा नहीं होता जी, पूरी पैकिंग उधेड़नी पड़ेगी, इसका एक पाया भी नहीं है। पाया लाएं? पाया जाने कहाँ पड़ा है, आप इसे ऐसे ही रहने दें। बरखुरदार, हम किसी चीज को टूटी हालत में वापस नहीं करते, तसल्ली बख्श मरम्मत करके देंगे। रजत की बर्दाश्त खत्म हो रही थी। उसने कहा, आप पहले इसे खोलिए तो सही, पुराना फर्नीचर है, कह नहीं सकते अंदर कितना काम करना पड़े। घर के अंदर से एक लड़का हाथ में संडसी और पेचकस लिए नमूदार हुआ। उसने इशारे से कुर्बान अली को कुछ समझाया, फिर हमसे कहा, कुल 1500 लेबर चार्ज होगा, सामान की कीमत अलग से। तबीयत झन्न हो गई, बैठे ठाले चपत पड़ रही थी। ट्रेंच की मदद से बाप बेटे ने देखते देखते सोफे का मोटा कपड़ा उखाड़ डाला। बाया हत्था उठाकर अलग रखा ही था कि धूल और फोम के बीच एक छोटी सी कील में अटकी अंगूठी चमक उठी। रजत ने लपक कर अंगूठी उठा ली और उलट पुलट कर ऐसे देखने लगा मानो उसे कोई ठेस तो नहीं लगी। कुर्बान अली तजुर्बेकार ढंग से हंसा। हम पहले ही समझ गए थे, चिट्ठी के लिए कोई इतना परेशान नहीं होता। रजत अपनी बाइक लाया था। उसने कहा, प्रियंका अकेली घबरा रही होगी। चावला, यार सॉरी, तुम ठीक से घर चले जाना। उसने बाइक स्टार्ट की और चल दिया। अली और उसके बेटे ने मुझे दिखाया कि सोफे के स्प्रिंग और फोम खस्ता हाल हैं, पर मैंने किसी तरह उन्हें समझाया कि ये सब काम मुलतवी रखें, बस सोफे की टांग लगा दें। पहले जैसी सागौन की टांग तो शायद ना मिले, फिर भी मजबूत ही लगाएंगे, उन्होंने कहा और घंटे भर में सोफे को पुरानी शक्ल में ला दिया। जेब से समस्त पैसे सोफे की मरम्मत पर लुटाकर जब मैं उसे वापस ट्रॉली में लेकर घर की तरफ चला, मुझे ऐसा लगा जैसे सोफे का पोस्टमार्टम करवा कर मैंने अभी उसे लाश घर से वापस हासिल किया है। गाथा में आप सुन रहे थे ममता कालिया की कहानी अंगूठी। गाथा में आपके लिए इस कहानी को प्रस्तुत किया शिफाली कपूर ने।